आज हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज पे डिस्कशन करेंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज?
मैडम, इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ सॉर्ट ऑफ एनर्जी. एवरी सब्सटेंस कंटेन्स चार्ज. व्हेन वी रब द टू बॉडीज, चार्ज ट्रांसफर्स फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर बॉडी, एंड देन वन बॉडी एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर बॉडी एक्वायर्स नेगेटिव चार्ज. ट्रांसफर ऑफ चार्ज टेक्स प्लेस. तो चार्ज इज प्रेजेंट इन एवरी बॉडी. It is the source of energy in the body.
Okay, there is a charge in every body, and if we rub, and there will be the transfer of the charges. It may be negative, it may be positive.
Yes, it is frictional electricity. That is called frictional electricity.
Okay, and how you will define the charge properly in proper in terms?
Charge is, I have just told you, charge is nothing but energy.
Okay, and what is a positive charge and what is a negative charge?
Positive and negative charges, they are just defined by convention.
Okay.
Convention, we have devised a convention ki when we rub a glass rod with silk, the charge acquired by the glass rod is positive and the charge acquired by the silk is negative.
Why it is so? Why it is negative on the silk and
positive? I have just told you it is a convention.
Okay.
We have conventionally assumed that the charge on the glass rod is positive and the charge on the silk is negative. Similarly, if we rub a ebonite rod with cat skin or flalin, then the charge on the ebonite rod will be negative and the charge on the cat skin will be positive. If such a ebonite rod which has been rubbed with cat skin is brought near the glass rod which has been rubbed with silk, they will attract each other. So it proves that the charge on the glass rod is different from the charge on the ebonite rod.
Okay.
They are of opposite kind. That is why they are attracting each other. It is one of the properties of electric charge. Okay. Like charges repel each other and unlike charges attract each other.
Okay.
So if we are having two glass rods, suppose we are having two glass rods and we rub them both with silk, and then one rod is suspended by means of a thread and another glass rod which has been rubbed with silk is brought near it, then that rod will get repelled from that glass rod. Which
okay,
is
just due
because
to
they have
the
same
charges.
Because okay. They are having same charge.
And that's if they have the opposite charges, then
they will attract.
That is known as the properties of electric.
It is one of the properties of electric charge.
One of the property of the electric charge is that then if they have the equal charges, then they will repel each other, and if they have the opposite charges, then they will attract each other.
Yes.
And what is defined as a positively charged element and negatively charged particles or element?
Positively charged particles in an atom are protons, and okay. The negatively charged particles are electrons. And
okay. Every
matter is composed of atoms, we know.
Yeah.
So atom has basically two parts. One is the nucleus. In the nucleus, we have two type of particles, protons and neutrons. Neutrons are having mass equal, approximately equal to proton. But they are chargeless. Neutrons are chargeless. They don't have any charge.
Yeah.
And protons are positively charged particles. So they are inside nucleus and they are responsible for the mass of the atom.
Okay.
Then we have electrons. Electrons revolve around nucleus just as planets revolve around sun.
Okay.
In the shells.
Okay.
Okay. And then these electrons are having negative charge. They are negatively charged particles. So the charge on the atom is zero, because
okay. The
charge on the protons and the charge on the electrons is same.
Every atom has an equal number of electrons and an equal number of
protons. Yes,
that's why they are the neutral charge.
They are neutral. Atom is electrically neutral.
Okay.
When somehow the charge of the atom is disturbed, suppose it gains some electrons or it loses some electrons, then it becomes an ion.
Okay.
Like sodium ion. Sodium ion has one more positive charge, it loses an electron.
Okay.
Actually, sodium loses an electron. Then what happens is it acquires a positive charge, because positive charge jo nucleus mein hai wo to disturb hua nahi. Electron nikal gaya ek.
Okay.
To kya ho gaya? 11 jo hai uske andar jo 11 protons to hain, lekin ab electron reh gaye 10, to us pe positive charge aa jayega.
Is there any specific reason to lose electrons or?
Yes. Specific reason, I have just told you, it is because of it can be due to electric field, it can be due to rubbing.
Okay.
So when loss of charge takes a loss of electron takes place, then one body which acquires the electron, that is negatively charged, and one which is loses the electron, that becomes positively charged. Yes.
Okay, that is again the property of the atom or particle, or it's just a discussion,
not one of the properties.
Okay.
So today we will be stating the basic properties of electric charge in our discussion, and then we will concept the concept of quantization and the conservation of electric charge.
Yeah.
Then we will discuss Coulomb's law, both in the vector form also. पहले वैसे स्टेट करेंगे उसको मैथमेटिकली, और उसके बाद उसको वेक्टर फॉर्म में भी बताएंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट भी करेंगे हम, फिर डाइपोल की बात करेंगे और डाइपोल का फील्ड निकालेंगे, फिर डाइपोल को कैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तब क्या होता है डाइपोल का, डाइपोल किस तरीके से अपने आप को अलाइन करता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, वो भी हम चर्चा करेंगे
जी।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। जैसे कि हम ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं कि जब हम दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उनमें से एक बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है, दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गई वहाँ पर। और जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाती है क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है बिफोर रबिंग
जी।
तो दोनों के एटम्स, जो भी हमने चीज़ें रब की आपस में, दोनों इलेक्ट्रिकली पहले न्यूट्रल थी, रब करने के बाद एक ने इलेक्ट्रॉन खोए, एक ने इलेक्ट्रॉन पाए। तो जिसने पाए वो नेगेटिवली चार्ज हो गया, जिसने खोए वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की बात हुई, और ये एक्टिविटी 15.1 है बच्चों, ये जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें हमने क्या किया है कि एक ग्लास रॉड को जो है सिल्क से रब करके उसको लटकाया गया है एक स्पोर्ट से, और उसके बाद में जो है दूसरी ग्लास रॉड को उसके पास लाया गया है। तो जैसे ही हम दूसरी ग्लास रॉड जो रब की गई है सिल्क के साथ में उसको लाते हैं सस्पेंडेड ग्लास रॉड के पास में, तो दोनों रॉड जो है वो रिपेल करना शुरू कर देते हैं। जो रॉड आपके हाथ में दो रिपेल करेगी नहीं, नेचुरली जो रॉड लटकी हुई है वो उससे दूर भागेगी। तो आप ये नोट करेंगे कि ऐसा होता है। तो इससे हम निष्कर्ष निकालते हैं कि भाई जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। और इसी एक्सपेरिमेंट को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं कि एक हम बजाय ग्लास रॉड के एबोनाइट रॉड को लटकाएं, प्लास्टिक की रॉड को लटकाएं जो कि पॉलीथीन से रब की गई है, या कैट स्किन से रब की गई है, या वूल से रब की गई है, इनमें से किसी से भी आप रब कर सकते हैं। एबोनाइट रॉड को वूल से रब कर लीजिए आप, तब भी वही रिजल्ट्स आएंगे। तो एबोनाइट रॉड को वूल से रब करके आप लटकाइए स्पोर्ट से धागे में बांध करके, और उसके बाद आप ग्लास रॉड जो आपने सिल्क से रब की थी उसको उसके पास लाइए। आप देखेंगे कि वो एमोनाइट रॉड भागती है ग्लास रॉड की ओर,
अट्रैक्ट
करती है। तो इससे ये निष्कर्ष निकला कि भाई जो अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करेंगे। और ये इससे ये बात सिद्ध भी हो गई कि जो ग्लास रॉड पर जो चार्ज आता है सिल्क से रब करने के बाद, वो उस चार्ज से अलग है जो चार्ज एमोनाइट रॉड पर आया वूल से रब करने के बाद। इससे ये बात भी सिद्ध हो जाती है। तो इसको हम समराइज कर सकते हैं अब जो है कि भाई लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करेंगे और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। तो ये हम एक एक प्रॉपर्टी करके डिस्कस करते जा रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रिक चार्ज की हुई वो ये हुई कि भाई लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। दिस इज दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। देन वी कम टू द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब बच्चों ये है कि चार्ज जो है वो ना कभी पैदा किया जा सकता है ना कभी खोया जा सकता है। वो सिर्फ जो है ना तो खोता है ना पाया जाता है, तो वो सिर्फ ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। मतलब कि जो चार्ज किसी भी इंट्रैक्शन से पहले था वही इंट्रैक्शन के बाद भी होगा। जैसे हम सिल्क और ग्लास रॉड का केस ले लें, तो बिफोर रबिंग देवर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सिल्क और ग्लास रॉड दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, और उसके बाद में हम जो है, तो बच्चों हम बात कर रहे थे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, तो मैं बता रहा था आपको कि जैसे ग्लास रॉड और सिल्क का केस हमने लिया था, तो उस केस में जब हम ग्लास रॉड को रब करते हैं सिल्क के साथ में, तो बिफोर रबिंग देवर बोथ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि जो चार्ज था दोनों पे कोई चार्ज नहीं था, ना तो ग्लास रॉड पे कोई चार्ज था ना ही सिल्क पे कोई चार्ज था। लेकिन जब हम रब करते हैं तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सपोज उस पर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज की आई, और सिल्क पे 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन सिल्क लूज़ करेगा वो इलेक्ट्रॉन जो है, जितने इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड लूज़ करेगी वो इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे सिल्क के द्वारा। तो अब जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए ग्लास रॉड ने, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए सिल्क ने। अब आप इस सिचुएशन के बाद में अब चार्ज ऐड करिए, 2 पॉजिटिव + 2 नेगेटिव, अगेन 0। तो बिफोर दिस रबिंग द टोटल चार्ज वॉज 0, आफ्टर द रबिंग ऑल्सो द टोटल चार्ज इज 0। सो वी कैन से द चार्ज इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को, इस जो प्रॉपर्टी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है, कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर। जैसे एनर्जी है उसको हम लाइट एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हैं, जो है जैसे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सारे कन्वर्जन करते हैं, साउंड में भी करते हैं हम, मैकेनिकल एनर्जी में करते हैं, जो मोटर चलती है बिजली की वो बिजली से ही चलती है, और उसमें क्या मैकेनिकल एनर्जी, मोटर घूमती है, हाँ पंखे में भी वही होता है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्जन है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्जन लाइट एनर्जी में बल्ब में है, ट्यूबलाइट में है, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ लाइट एनर्जी में होती है। तो सिमिलरली हम चार्ज भी जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी को ट्रांसफर किया जा सकता है, चार्ज को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो इनहेरेंटली बॉडी के अंदर चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होता है जब तक बॉडी को डिस्टर्ब ना किया जाए। रबिंग वगैरह अगर हम करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे बॉडी को, तो उसके चार्ज को हम डिस्टर्ब कर सकते हैं
जी।
तब वो बॉडी चार्ज हो जाती है, जैसा कि आप आयन्स वगैरह के केस में देखते हैं, सोडियम आयन है, क्लोराइड आयन है, वहां पर डिस्टरबेंस जो है वो चार्ज को हमने
आउटर फोर्स की वजह से,
आउटर फोर्स की वजह से बॉडी चार्ज हो जाती है वहां
जी।
सो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात हुई। अगली बात है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की। तो ये तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की, कि चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड भी होता है। क्वांटाइज्ड का मतलब, अब आप सोच रहे होंगे क्वांटाइज्ड क्या है भैया, क्वांटाइज्ड का मतलब ये है कि बच्चों के चार्ज किसी बॉडी पर इंटीग्रल मल्टीपल होगा ई का। ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है, तो किसी भी बॉडी पर ये नहीं कह सकते कि किसी बॉडी पे चार्ज 1.5e है या 2.5e है या 3.2e है, ये नहीं हो सकता। उस पे चार्ज या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा या 4e होगा, मतलब इंटीग्रल
मल्टीपल,
या इट शुड बी इंटीजर। सो हम अगर चार्ज बॉडी पर q है तो q शुड बी इक्वल टू एन ई, और n यहां पर वैल्यू ले सकता है 0 से लेकर के +1, +2, +3, तो n की ये वैल्यू होगी, तो n की कोई भी वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकती, वो इंटीजर ही होगी
जी।
तो ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बात हुई। तो अब हम समराइज कर लेते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। पहली प्रॉपर्टी ये है कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो 2 किस्म का होता है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और लाइक चार्जेस जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। तीसरी बात हमने पढ़ी कि भाई चार्ज जो है वो कंजर्व्ड रहता है, चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड। और चौथी बात हमने पढ़ी कि चार्ज क्वांटाइज्ड है, चार्ज जो है वो मल्टीपल एन का हो सकता है, कि एन जहाँ पर इंटीजर है।
सर यहाँ पे जो क्वांटाइजेशन की बात हो रही है, तो इज देयर एनी मैथमेटिकल फार्मूला फॉर टू फाइंड द क्वांटाइजेशन?
यस, क्यू इज इक्वल टू एनी, जैसा मैंने बताया क्यू इज इक्वल टू एनी जो ये फार्मूला है, इसी से सिद्ध हो जाता है कि चार्ज क्वांटाइज्ड है और एन की वैल्यू यहाँ पर 0, +-1, +-2, +-3 एंड सो
कुछ भी हो सकती
सो ऑन।
और ई
इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम्ब। कूलम्ब जो है वो चार्ज की यूनिट है। क्यू इज द चार्ज ऑन बॉडी। तो बच्चों अब इसके बाद हम बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ बताता है हमें कि दो चार्ज बॉडीज अगर हैं तो उनमें जो फोर्स लगेगी उन दोनों के बीच में वो कितनी होगी?
दो इलेक्ट्रिक चार्ज,
दो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस.
ओके,
इफ दे आर कैप्ट एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, देन हाउ मच फोर्स दे विल एग्जर्ट ऑन ईच अदर, व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस. तो कूलॉम स्टेटेड दैट द दैट फोर्स विच एग्जिस्ट बिटवीन टू चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. यानी कि एफ अगर फोर्स है दो चार्जेस क्यू वन और क्यू टू के बीच, तो एफ विल बी प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू,
दोनों चार्जेस के
प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल.
ओके,
और सेकेंडली इट शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. यानी कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर स्क्वायर. अब इन दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगा एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर. और इस प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेलिटी में चेंज करें तो एक कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा हमारे पास. तो वो इक्वेशन आ जाएगी एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जो कि आपकी बुक की इक्वेशन 15.1 है. तो बच्चों यहां पर के है कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और इस के की खास वैल्यू होती है दैट इज 1/4πε0. ये एप्साइले नॉट जो है वो आप देखोगे ई जैसा लिखा हुआ है, जैसे ई लिखते हैं बड़ा वाला ई, उस तरीके से लिखा हुआ है. इस सिंबल को हम एप्साइलिन बोलते हैं, और इसके नीचे एक जीरो लगी हुई है जो सबस्क्रिप्ट है, तो उसको हम नॉट बोलते हैं, एप्साइले नॉट. सो दिस इज एप्साइले नॉट इज द परमिटिविटी, इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस.
Okay,
ये नॉट जो डिनोट कर रहा है, ये नॉट का मतलब ये है कि ये फ्री स्पेस की परमिटिविटी है.
इट मींस कि देयर इज अ डिफरेंट परमिटिविटी फॉर डिफरेंट स्पेसेस.
यस, देयर इज डिफरेंट परमिटिविटी फॉर डिफरेंट मीडियम्स. हर मीडियम की परमिटिविटी अलग अलग होती है.
दैट मींस स्पेस मींस
यस
वैक्यूम.
ये जो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं, ये क्यू वन और क्यू टू के बीच के स्पेस को हमने फ्री स्पेस माना है, यानी कि वैक्यूम माना.
वैक्यूम.
अगर ये दो चार्जेस सेपरेट किसी और मीडियम में होते, सपोज इन दोनों के बीच में माइका होता, इन दोनों के बीच में वुड होती, इन दोनों के बीच में कोई और मेटेरियल होता, तो फिर हम एप्साइलन नॉट ना ले करके एप्साइलन लेते इस फॉर्मूले में.
दैट मींस एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम,
दैट पर्टिकुलर मीडियम. एंड हेयर इट इज एप्साइलन नॉट बिकॉज वी हैव टेकन फ्री स्पेस. सो Now this formula becomes F is equal to 1/4πε0 Q1 Q2 upon R square. So, यहाँ पर constant of proportionality K जो है वो हो गया equal to 1/4πε0 और ε0 जैसा कि मैंने बताया permittivity of free space है. It has a value 8.85 × 10⁻²⁻¹² Coulomb square upon Newton meter square. ये value होती है इसकी. तो ये बात हुई Coulomb's law की. तो कूलॉम्स लॉ की कुछ सेलियंट फीचर्स हैं जो कि मैं बताना चाहता हूं आपको. कूलॉम्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ जस्ट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के बिटवीन टू मासेस. इस यहाँ पर भी वही है कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है.
okay.
और वहां भी फोर्स प्रोपोर्शनल होती है प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के प्रोपोर्शनल है. तो ये सिमिलरिटी है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में और कूलॉम्स लॉ में. दूसरी बात, कूलॉम्स लॉ जो है वो सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए होल्ड करता है. पॉइंट चार्ज अगर ना हो, अगर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या चार्ज हो या कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हो, तो वहां हम कूलॉम्स लॉ अप्लाई नहीं कर सकते. दूसरी बात, कूलॉम्स लॉ जो है वो डिस्टेंस पर एक्ट करता है जस्ट लाइक मैकेनिकल फोर्स. तो ये कूलॉम्स लॉ की बात हुई. अब हम कूलॉम्स लॉ के बाद बात करते हैं कि भाई अगर जो ये मीडियम जो है अगर चेंज हो जाए दो चार्जेस के बीच में, अगर ये फ्री स्पेस ना रहे, तो इस फोर्स को क्या होगा? ये फोर्स घटेगी, बढ़ेगी, चेंज होगी या सेम रहेगी? तो वो आप देखिए कि ये एक रिलेशन लिखा हुआ है, एफ नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट. यानी कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम. ए फोर्स इन मीडियम इज टू फोर्स इन वैक्यूम इज टू वी हैव ऑलरेडी फाउंड. फोर्स इन मीडियम से अगर इसको डिवाइड करें तो जो रेशियो होगा वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू एप्साइलन अपॉन एप्साइलन नॉट. के एप्साइलन जो है वो यहाँ परमिटिविटी मीडियम की है और एप्साइलन नॉट फ्री स्पेस की है. तो उसका रेशियो जो है उसको एक हमने खास नाम दिया है, रिलेटिव परमिटिविटी और उसको एप्साइलन आर से डिनोट करते हैं, एप्साइलन के साथ एक सबस्क्रिप्ट
आर रिप्रेजेंट्स रिलेटिव
रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी के, वो रिलेटिव परमिटिविटी है उस पर्टिकुलर मीडियम की. तो जो है फोर्स का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम विल बी इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम. सो दिस इज दिस रिलेटिव परमिटिविटी इज ऑल्सो गिवन ए स्पेशल नेम, डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट भी कहते हैं इसको. एप्साइलन आर को हम डायलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से भी कहते हैं और इसको के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट
बिकॉज इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज
फॉर ए मीडियम इट हैज ए कांस्टेंट वैल्यू, सो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं और इसको के से, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं. अब हम बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में कि कूलॉम्स लॉ जो है, क्योंकि फोर्स के बारे में बता रहा है तो इस फोर्स की कोई डायरेक्शन होगी,
डायरेक्शन होगी
भाई, फोर्स की डायरेक्शन ही होती है
बिल्कुल.
तो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर हम स्टडी ना करें तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन हम नहीं ले सकते इस लॉ की. तो इसके लिए बच्चों देखिए कि हमने ये दो इक्वेशंस लिखी हैं, आप अपनी टेक्स्ट बुक साथ लेके बैठे होंगे, आई होप सो. तो 15.4 और 15.5 आप ये दो इक्वेशन देखिए, एफ वन टू इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू मैग्नीट्यूड स्क्वायर इन टू आर वन टू कैप. तो यहाँ आर वन टू कैप जो है ये यूनिट वैक्टर को डिनोट कर रहा है, विच इज डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज वन टू चार्ज टू. और ये आप फिगर देख सकते हैं, और ए और बी जो दो फिगर बनी हुई हैं, ये फिगर ए में रिपल्सन रिपल्शन की फोर्स दिखाई क्योंकि दोनों चार्जेस जो है वो सेम है, पॉजिटिव चार्जेस हैं तो दोनों के बीच में रिपल्शन होगा. एफ वन टू टुवर्ड्स लेफ्ट एक्ट करेगी और एफ टू वन टुवर्ड्स राइट एक्ट करेगी. सिमिलरली इन फिगर बी, as one of the charge is positive, positive, other charge is negative, so there will be force of
attraction.
F12 will be towards right and F21 will be towards left, so they will attract each other.
Yeah, that is just because of the properties
so these,
of the electric
charge. So this has been stated in equation 15.4 and 15.5. So pehle mein F12 is equal to KQ1 Q2 upon R12 square R12 cap likha hai, dusre mein F21 jo hai वो माइनस के साथ शुरू होता है, माइनस साइन यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया
जी.
तो के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर वन टू स्क्वायर आर वन टू कैप यहाँ माइनस आ गया, इसका मतलब यह है कि एफ वन टू विल बी इक्वल टू माइनस एफ टू वन, यानी कि ये दो फोर्सेस जो होंगी वो इक्वल एंड अपोजिट
है,
इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि फोर्स
सेम डिस्टेंस है, सेम चार्जेस हैं, दैट्स व्हाई द फोर्सेस विल बी द सेम, बट क्योंकि आपका उनका चार्ज डिफरेंट है.
नो नो नो, बिकॉज एक चार्ज जो है
positive.
वो दोनों चार्ज पहले केस में पॉजिटिव है, दूसरे केस में नेगेटिव है एक चार्ज है. लेकिन F12 जो है वो फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू है.
okay.
ये जो सब्सक्रिप्ट है 1 2, इसका मतलब ये है कि F12 का मतलब फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, और F21 का मतलब है कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन. तो पहले चार्ज पे जो दूसरे की वजह से फोर्स होगी वो इक्वल एंड अपोजिट होगी जो सेकंड चार्ज पे लगेगी पहले की वजह से. तो ये फोर्सेस जो एक दूसरे पर ये एग्जर्ट करेंगे वो सेम होगी लेकिन उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी. उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होगी. तो यानी कि F12 जो है वो पहले केस में अगर हम देखें, फिगर ए में देखें, तो पहले केस में F12 लेफ्ट में है
जी.
और F21 राइट में है
बिल्कुल.
दूसरे केस में देखें तो F12 राइट में है और F21 लेफ्ट में है. तो दोनों केसेस में अगर आप देखें, चाहे केस अट्रैक्शन का हो या केस रिपल्शन का हो, इट हार्डली मैटर्स फॉर द डायरेक्शन.
ओके,
इन बोथ द केसेस F12 एंड F21 विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड, ऑल्दो देयर मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल. सो दिस इज कूलॉम्स लॉ इन द वेक्टर फॉर्म. आई होप यू हैव अंडरस्टूड डियर लर्नर्स. Now we talk to the we will talk about the superposition. Okay, if we are having suppose number of charges, then how we will calculate the total force on a test charge?
अभी तो हम लोगों ने दो charges के बारे में बात की. रहे थे. अगर दो से ज्यादा charges होते हैं in
तो
that particular cases के.
हाँ जी. तो ये बात कर रहे हैं हम, ये जैसे देखिए आप जो है चार्ज Q1 पर लगने वाली forces की बात कर रहे हैं. Figure आप देख सकते हैं 15.4, यहाँ एक charge है Q1 और उसके आसपास कई चार्ज हैं, Q2 है, Q3 है, Q4 है. तो ये Q2, Q3 और Q4 की वजह से इस चार्ज Q1 पर कौन कौन सी फोर्सेस लगेंगी,
हाँ.
पहले उनकी बात कर ली जाए. तो चार्ज F12, F13, F14 हम कैलकुलेट करेंगे, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि भाई टोटल फोर्स कितनी होगी वो कैसे फाइंड आउट की जाए, वो हम निकाल लेंगे, उसको ही सुपरपोजिशन कहते हैं।
तो वो क्या सबको प्लस करके निकाल,
हाँ जी हाँ जी, उनका वेक्टर हम फाइंड आउट कर लेंगे, इन सारी फोर्सेस को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, लेकिन इट विल नॉट बी एल्जेब्रिक एडिशन,
ओके,
इट विल बी वेक्टर एडिशन, जैसे वेक्टर्स को जोड़ा जाता है उस तरीके से हम इन फोर्सेस को जोड़ेंगे, मतलब इनके खाली मैग्नीट्यूड की बात नहीं होगी, इनके
डायरेक्शन
वो भी अकाउंट में लिया जाएगा
जी,
तभी वेक्टर एडिशन होता है
जी।
जैसे आप जानते होंगे बच्चों वेक्टर एडिशन आपने पढ़ाई होगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, तो उन पर्टिकुलर लॉज का इस्तेमाल करते हुए ही इन वेक्टर्स को जोड़ा जाना
जोड़ा है। जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज
है, ये वेक्टर क्वांटिटीज है। तो F12 का आप एक्सप्रेशन देख रहे हो कि Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप है, सिमिलरली F13 का जो है K Q1 Q3 अपॉन R13 मैग्नीट्यूड स्क्वायर R13 कैप है एंड सो ऑन। सो टोटल फोर्स जो होगा वो F इज विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 एंड सो ऑन, चाहे वो n चार्जेस
जितने भी चार्जेस होंगे सबका प्लस हो जाएगा वेक्टर,
वेक्टर सम ले लिया जाएगा
बिल्कुल।
तो ये बात हमने की सुपरपोजिशन की। बच्चों अब तक हम बात कर रहे थे फोर्स बिटवीन टू चार्जेस की, हमने कूलॉम्स लॉ की बात की, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई ए पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्यू नॉट प्लेस्ड एट दैट पॉइंट डिवाइडेड बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। यानी कि इसको अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म में बोलें तो ई विल बी इक्वल टू F अपॉन क्यू नॉट। यहाँ F जो है वो फोर्स है चार्ज और टेस्ट चार्ज क्यू नॉट के बीच, के जो फोर्स लगेगी Q और क्यू नॉट के बीच में वो F है
जी।
और अगर इसको इस फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दें तो हमें जो क्वांटिटी मिलेगी वो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ जी, और क्यू नॉट क्योंकि आप जानते हो एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी से अगर हम किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट वेक्टर ही आता है। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स की होगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगा। अब ये इक्वेशन तो हमने बड़ी सिंपली लिख दी कि ई विल बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, लेकिन यहाँ इसको डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये क्यू नॉट जो है ये बहुत छोटा होना चाहिए। अगर टेस्ट चार्ज बड़ा होगा तो वो जिस बॉडी का हम जिस बॉडी के और टेस्ट चार्ज के बीच में फोर्स निकालना चाहते हैं उसके चार्ज को जो है वो डिस्टर्ब कर देगा।
okay.
क्योंकि हम एक तो... चार्ज बॉडी के पास में अगर दूसरी चार्ज बॉडी लाते हैं
तो वो
और वो इक्वल अमाउंट की हो अगर वो तो क्या करेगी, वो उसके चार्ज जो है वो भागेगा दूर, उसका सरफेस अगर बॉडी का बड़ा है तो वो उस सरफेस पे उससे दूरी बनाने की कोशिश करेगा
जी।
एक पॉजिटिवली चार्ज, जैसे हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को लाए इसके पास में क्यू नॉट को ला रहे हैं बॉडी के पास में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हमने रख दिया उसको, तो उस बॉडी से जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है दूसरी बॉडी का जिसके बीच में फोर्स निकालनी है
जी,
तो उसका पॉजिटिव चार्ज से दूर भागना शुरू कर देगा
बिल्कुल।
तो इस कारण उसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल गया, वो बदलना नहीं चाहिए। और वो कब नहीं बदलेगा, जब ये क्यू नॉट जो है इट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। तो हम एक कंडीशन लगाते हैं कि भाई क्यू नॉट अप्रोचेस जीरो, although it is not zero but it approaches zero, जैसा कि आपने बच्चों मैथमेटिक्स में पढ़ा भी होगा डिफरेंशियल इंटीग्रल कैलकुलस में हम लिमिट्स लेते हैं
जी,
तो वो लिमिट ही हमने यहाँ पर ली है। और ये आप फिगर ये आप इक्वेशन 15.11 से देख सकते हैं कि हमने e को लिखा है कि लिमिट q नॉट अप्रोचेस जीरो f अपॉन q नॉट, तो रिलेशन तो वही रहा कि e इज इक्वल टू f अपॉन q नॉट ही है
जी।
लेकिन यहां हमने एक कंडीशन डाल दी कि भाई Q नॉट शुड अप्रोच जीरो, Q नॉट इज नॉट जीरो। अगर Q नॉट जीरो हो जाएगा तो फिर तो फोर्स लगेगी
नहीं,
फिर तो फोर्स लगनी नहीं
बिल्कुल।
तो Q नॉट जीरो तो नहीं है लेकिन ये बहुत
जीरो के आसपास
है, जीरो के आसपास है, बहुत ही छोटा है
बिल्कुल।
इससे क्या होगा, जो हमारी ओरिजिनल चार्ज बॉडी है उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं होगा, और वही हम चाहते भी
जी।
तो अब बच्चों इसमें हम एफ की अगर वैल्यू डालें 15.12, आप देखिए एफ विल बी इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, यही होगी फोर्स। और इसको हम अगर क्यू नॉट से डिवाइड कर दें यहां पर, तो हमारे पास ई आ जाएगा, ई विल बी इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। अब यहां पर ये जो आर कैप है इसको बताना जरूरी है कि भाई ये आर कैप किधर होगा। तो आर कैप जो है किधर होगा बच्चों, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम चार्ज टू द टेस्ट चार्ज, ये क्यू से क्यू नॉट की ओर होगा। तो क्यू से क्यू नॉट की ओर होगी इसकी डायरेक्शन। तो इससे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का जो फील्ड है वो आउटवर्ड होता है। ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स भी आप देख सकते हैं कि अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती हैं वो रेडियली आउटवर्ड होती हैं, और अगर वही चार्ज नेगेटिव चार्ज है तो वो रेडियली इनवर्ड्स होती हैं। जैसे हम एक सर्कल लें तो उसकी रेडियस खींच सकते हैं, बहुत सारे रेडियस उसके बना सकते हैं
जी।
तो वो रेडियस की डायरेक्शन में, अगर वो रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की ओर एरो लगाया जाए तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन का फील्ड की डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और अगर वही एरो हम अंदर की ओर लगा दें
तो
नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बन जाएंगी वो। तो ये दिखाया गया है फिगर 15.7 में। अब हम बात करते हैं कि भाई ये जो फील्ड है जो हमने निकाला, ये तो हमने निकाला एक टेस्ट चार्ज की वजह से। अगर हम देयर आर नंबर ऑफ चार्जेस, एक नहीं कई सारे चार्ज हैं, उन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हमें किसी पॉइंट पर, तो वो हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं।
सम हो जाएगा,
हाँ सम हो जाएगा, सबका वेक्टर सम हो जाएगा कि जैसे ई वन विल बी इक्वल टू के क्यू वन आर वन स्क्वायर अपॉन R1 square into R1 cap. Similarly, E2 will be equal to KQ2 upon R2 square into R2 cap and so on. So we can add them up. So E, the total electric field will be equal to E1 plus E2 plus E3.
Sum of the
vector sum हो जाएगा उनका, और इसको हम summation की form में लिख सकते हैं
जी।
K को हम बाहर ले लें, K का कोई summation से लेना देना नहीं है, तो K आप outside the summation, so K summation I equal to 1 to N QI upon RI square into RI cap. तो यहां पर जो RI है वो डिस्टेंस है ith पार्टिकल का, ith चार्ज पार्टिकल का फ्रॉम द पॉइंट P where the field is to be found. और RI is a unit vector directed from point P to that charge. तो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल की, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। डाइपोल जो है व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इनफाइनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस,
इक्वल एंड अपोजिट
चार्जेस, एक अगर चार्जेस शुड बी अपोजिट एंड दे शुड बी इक्वल ऑल्सो। तो एक पे अगर चार्ज माइनस क्यू है तो दूसरा चार्ज प्लस क्यू होना चाहिए। तो माइनस क्यू और प्लस क्यू को अगर हम एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट कर दें तो इस सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं।
तो व्हाट इज द यूज ऑफ डाइपोल?
डाइपोल क्यों को स्टडी करना इसलिए जरूरी है क्योंकि नेचुरली डाइपोल पाया जाता है।
ओके
अब जैसे आप बात करें, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो पोलर फॉर्म में ही मिलते हैं।
ओके
हाँ जी, जैसे केमिस्ट्री में आप देखिए कि H2O है, वो भी पोलर मॉलिक्यूल है। हम कईयों की बात करें, कई ऐसे जो हम मॉलिक्यूल्स देखते हैं, NH3 है, वो भी पोलर है। तो उसको इसलिए स्टडी करना जरूरी है क्योंकि हम उसके बारे में कुछ जान ही नहीं पाएंगे अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में नहीं जानते। तो डाइपोल को इसलिए जरूरी जानना है और उसको किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड में वो किस तरीके से बिहेव करता है रखने के बाद, और इलेक्ट्रिक डाइपोल का फील्ड हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर, उसकी एक्सियल लाइन पर। तो ये सब बातें हम जानेंगे अगले जब हम बात करेंगे आपसे दोबारा, जब बातें होंगी हमारी।
जी हाँ, आज का तो चर्चा का हमारा समय खत्म हो रहा है, तो आज तो हम लोग डाइपोल की बस परिभाषा,
डाइपोल की परिभाषा मैंने दे दी कि डाइपोल जब दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम सेपरेट करते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होना चाहिए उन दोनों के बीच में, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, दे आर सेपरेटेड बाई ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस, लेट इट बी 2a। उसको हम टू ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप कहोगे सर ए से क्यों नहीं किया, टू ए ही क्यों लिया? ये टू ए आपको बाद में समझ आएगा जब मैं आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवाऊंगा कि मैंने टू ए क्यों रखा, क्योंकि इसका आधा मुझे लेना होगा। जब ए बाई टू लूंगा तो फिर वो कैलकुलेशन
कॉम्प्लिकेशन,
इसलिए पहले टू ए ले लिया कि इसका आधा करने में आसानी होगी,
हो जाएगा जी,
ये इसका आधा ए हो जाएगा, तो हमें आधा इसका लेना ही लेना है आगे जब
जी।
तो इसलिए इसको बेटे टू ए लिया गया बच्चों। तो अब इसको जो हम डाइपोल मोमेंट को डिफाइन कर देते हैं यहाँ पर, कि डाइपोल मोमेंट क्या है। डाइपोल बता दिया मैंने आपको, अब डाइपोल मोमेंट क्या है, ये एक मैथमेटिकल टर्म है। डाइपोल मोमेंट इज आइदर चार्ज इन टू द सेपरेशन बिटवीन देम। तो चार्ज क्यू है और सेपरेशन है टू ए, तो जो डाइपोल मोमेंट हो गया वो हो गया क्यू इंटू टू ए, ठीक है जी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी
जी।
और इसका जो इसमें डायरेक्शन कौन सी होगी भाई, क्यू की तो कोई डायरेक्शन होती नहीं चार्ज की, तो इसका मतलब पी की जो डाइपोल मोमेंट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, तो पी की वही डायरेक्शन होगी जो टू ए वैक्टर की डायरेक्शन होगी। और टू ए वैक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, इट विल बी डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, यानी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर टू ए की डायरेक्शन, हाँ जी माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर डायरेक्शन होगी टू ए की, और वही डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की भी होगी। अब क्योंकि एक फिजिकल क्वांटिटी है तो भाई इसकी एक यूनिट भी होनी चाहिए। तो क्योंकि q इज मेजर्ड इन कूलम एंड 2L इज मेजर्ड इन मीटर्स, तो इसका मतलब डाइपोल मोमेंट की यूनिट हो गई कूलम मीटर
जी।
तो बच्चों आज हमने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, सबसे पहले हमने बात की इलेक्ट्रिक चार्ज की, फिर उसके बाद बात की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस की, उसके बाद में हमने कूलम्स लॉ बताया आपको कि भाई कूलम्स लॉ, फिर हमने कूलम्स लॉ को डिस्कस किया वेक्टर फॉर्म में भी डिस्कस किया, फिर उसके बाद आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड बताया कि किस तरीके से पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड
जी।
और उसके बाद में हमने डाइपोल की चर्चा की और डाइपोल मोमेंट की भी चर्चा की उसके बाद में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही।